आप हैं SBS हिंदी के साथ।
कोरोना महामारी के इस दौर में शायद ही कोई ऐसा हो जो परेशान न हो। कुछ न सही तो रोज बरोज सामने आ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों से ही मन परेशान हो जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी परेशानी इससे कहीं ज्यादा है। कई लोग इस संक्रमण से जूझ रहे हैं। विश्व भर में प्रतिबंधों के कारण मंदी का दौर है, अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। यकीन मानिए, ये सब परेशान करने वाला है, लेकिन इस महामारी की परेशानी का महज एक पहलू है। कई ऐसी परेशानियां हैं जो अनदेखी हैं, अप्रत्यक्ष हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऐसी ही कुछ परेशानियों से गुजर रहे हैं यहाँ पढ़ाई करने आए अंतर्राष्ट्रीय छात्र। मोनिका चौधरी सिडनी के एक निजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो वहाँ पर मार्केटिंग और अर्थशास्त्र पढ़ाती हैं। वो कहती हैं कि भारत या किसी और देश से आए छात्रों के लिए यहाँ अपने घर जैसे हालात नहीं हैं। उन्हें न केवल यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि साथ में खर्च चलाने के लिए काम भी करना पड़ता है।
स्टूडेंट एक इस तरह का सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, जो बहुत स्ट्रगल करता है, सिर्फ पढ़ने में नहीं, वो अपने अपने अपनी फैमिली को भी देख रहा है। स्पेशली यहाँ पे सिडनी पे आप सिर्फ पढ़ाई करके अपना काम नहीं कर सकते हो। इंडिया में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर देती है, आपको काम नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आके उसको अपनी फीस भी देनी है, अपना अकेले फैमिली से दूर है, तो फिर उसकी जो स्ट्रगल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और स्पेशली इस कोरोना के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही हैं। उन लोगों को फेस टू फेस पढ़ने की जगह अब सब ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और हर कोई अपनी तरह से चैलेंज फील कर रहा है।
मोनिका भारत में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली है। करीब एक साल पहले ही वो यहाँ पर आई थी। वो कहती हैं कि हालांकि वो परमानेंट रेजिडेंट वीजा लेकर यहाँ पर आई थी, लेकिन हर किसी की तरह शुरुआती स्ट्रगल तो उनके परिवार को भी करना पड़ा था।
मैं एक्चुअली गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। गाजियाबाद दिल्ली NCR में आता है, वहीं पे पली बड़ी हूँ, वहीं पे अपनी एजुकेशन करी है। सिडनी मैं अपने पूरे परिवार के साथ पिछले साल आई थी, जुलाई में ही, तब तक ये कोरोना वायरस जैसा कुछ नहीं था। मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन फिर MBA किया है, उसके बाद PhD भी की है। मेरी फील्ड है बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे भी मैं पढ़ाई करती थी। आई वाज टीचिंग यहाँ वहाँ पे प्रोफेसर की तरह, मैं वहाँ काम कर रही थी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती थी। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई किया, जब PR आ गया हम लोगों का, तो हमें लगा कि ठीक है वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए, देखते हैं। दो छोटे बच्चे हैं मेरे, उनके फ्यूचर के लिए भी देखना है, अपने लिए भी देखना है, तो इस ये सब कैलकुलेट करके सब कुछ वहाँ पे जॉब छोड़ के फिर हम लोग यहाँ पे पिछले साल आए। आके थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, क्योंकि जॉब ढूंढनी थी, सेटल होना था, बच्चों को स्कूलिंग एंड घर ये सब भी देखना था। पर लकीली PhD जब आप कर लेते हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दोबारा एजुकेशन नहीं करनी पड़ती, ये थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाती है।
मोनिका कहती हैं क्योंकि वो अध्यापन क्षेत्र से आती हैं, इसलिए वो समझ सकती हैं कि इस मुश्किल घड़ी में अंतर्राष्ट्रीय छात्र किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। वो कहती हैं कि जब उन्हें मदद की जरूरत थी तो किसी ने उनकी भी मदद की थी, इसलिए उन्होंने मुश्किल वक्त में छात्रों की मदद करने की कोशिश की। सुनिए खुद मोनिका से ही, क्योंकि अपने आप में अनोखी मदद की पेशकश है ये।
मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे को कभी जरूरत थी, मेरी किसी ने मदद की थी, तो अगर जो चीज मैं कर सकती हूँ मुझे मदद करनी चाहिए, और जिन लोगों को जो लोग इस मदद का इस्तेमाल से कुछ अच्छा कर पाएंगे, शायद फ्यूचर में वो भी किसी की मदद करेंगे आगे। इसी तरह से शायद आप इंसानियत को जिंदा रखते हो। तो मैंने देखा स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते हुए, और मुझे लगा कि ये मेरे पास नॉलेज है, अगर किसी को जरूरत है तो मैं हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ।
मोनिका ने सामुदायिक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को मदद की पेशकश की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि अगर किसी को उनसे जुड़े विषयों में मदद की जरूरत है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमने उनसे सवाल किया कि वो कैसे इन छात्रों की समस्याएं हल करने वाली हैं।
आपको सच में बताऊं तो जब ये चीज पोस्ट डाली थी मैंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि मैं ज्यादा करने में विश्वास रखती हूँ कि आप शुरू कीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 दिनों से काफी तरह के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं. कई लोगों को अपने असाइनमेंट में प्रॉब्लम है कि वो कर लेंगे पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. तो मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इतने सारे स्टूडेंट्स से बात करती हूँ, अपनी नॉलेज से मैं उनको बेस्ट सजेशन देती हूँ कि आप इस तरह से कुछ कर लीजिए तो आपके लिए बेस्ट होगा. थोड़ा डेटा एनालिटिक्स में भी मेरा इंटरेस्ट है, उसमें भी काफी रिसर्च की है मैंने. तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को डेटा उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं डेटा. कई पीएचडी स्टूडेंट्स ने भी कांटेक्ट किया है क्योंकि उनको पेपर राइटिंग करनी है, तो दे वांट कि थोड़ा सा उनको कुछ गाइडेंस मिल जाए कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए. और इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट मेरा बैकग्राउंड है. कई लोगों को इकोनॉमिक्स के कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है, उनको कोई टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है.
मोनिका मानती हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते छात्रों से मिलकर उनकी मदद करना मुश्किल होगा, इसलिए वो ऑनलाइन माध्यमों का सहारा ले रही हैं।
इस कोरोना के चक्कर में फिजिकली यू नो फेस टू फेस मिलना शायद मुश्किल ना भी हो पाए, तो जूम की कॉल की तरह या किसी और तरह से हम लोग उसको ऑनलाइन कर सकते हैं. So, इस तरह के डिफरेंट दिमाग में मेरे आइडियाज हैं, जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट देख के सोल्यूशन उनको देना, उनकी हेल्प करना इस मकसद से है, तो जरिए मिल जाएंगे.
लेकिन क्या होगा अगर मोनिका तक मदद करने के लिए पहुंचने वालों की संख्या इतनी हो जाए कि उनके पास सबके लिए समय ही ना रहे?
अभी नहीं सोचा है, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ, मुझे लगता है मेरे जैसे दो चार लोग और मिल जाएंगे. अभी शुरू किए जाए नहीं, अगर कोई और लोग साथ देना चाहते हैं और ज्यादा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो फिर ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाएगी.
हालांकि मोनिका के पोस्ट पर समुदाय के दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं.
लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, पर्सनल डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं. मैंने देखा है कई बार इस तरीके यू नो जेन्युइन एफर्ट को लोग थोड़े डिफरेंट तरीके से देख लेते हैं, उन्हें लगता है इनका कोई हिडन एजेंडा होगा या कुछ और चीज सेल तो नहीं कर रहे हैं. इसलिए मैंने उनको मेंशन किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. किसी ने भी, हर कोई अप्रिशिएट ही कर रहा है इस चीज को, तो अच्छा लगा, मोटिवेशन हुआ, ऐसा लगा कि सही दिशा में जा रहे हैं, आगे और इस तरह की अटेम्प्ट करेंगे तो किसी ना किसी की हेल्प होगी.
एक अध्यापिका के तौर पर वो कहती हैं कि छात्रों के लिए यह मुश्किल दौर तो है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय छात्र संभल रहे हैं.
कोविड 19 जब से आया है तब से एजुकेशन के लिए बहुत यू नो एक पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम हो गया है. फेस टू फेस क्लासेस हो नहीं पा रही है, ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं ही नहीं कैंपस में. जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो कई लोग अपने वापस कंट्री चले गए हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है. लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इंटरनेट है, सो कोई काम रुक नहीं रहा है. एटलीस्ट जहां मैं काम करती हूँ, जिस यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है, सारी क्लासेस ऑनलाइन चली गई हैं, जूम के तहत या किसी और जरिए से क्लासेस जरूर हो रही हैं. प्रोग्रेसिव है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई क्योंकि स्टूडेंट्स भी तैयार नहीं थे. मोटिवेशन में फर्क होता है उनको, कईयों के पास इंटरनेट नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तो कनेक्टिविटी इश्यूज होते हैं. पर हम देख रहे हैं कि कोविड 19 जल्दी से जाने वाला तो नहीं है, तो चीजें नहीं रुकनी चाहिए, तो काम चल रहा है, सब ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है. अभी हमने पिछले महीने ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया है, तो वो भी हुआ है. कुछ दिक्कतें आई एक दो बार, लेकिन जैसे ही इंटरनेट ठीक हुआ वो हो गया है. और आई थिंक स्टूडेंट्स भी समझते हैं, बहुत छोटे बच्चे नहीं है, दीज आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उन्हें पता है ये सिचुएशन है, कोई अपना साल खराब नहीं करना चाहता है. तो प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी चीजें आगे बढ़ रही हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि उनकी एजुकेशन ना रुके, उनका साल ना खराब हो.
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं.